जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धरी। राधा माधव कुंजी जन हरी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धरी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बन
Thank you. నిత్యం భాగవత సేవయ భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తి భవతి నైష్ఠ नित्य भागवत सेवा और भी नित्य सेवा आप लोग करते होंगे नित्य सेवा भागवत की नित्य सेवा अनिवार्य है सेवा आज ये दसवां स्कंद अध्याय दूसरा श्लोक संख्या छह
భగవానపి విశ్వాత్మా విదిత్వా కంసజం భయం యదూనాం నిజనాథానాం యోగమాయా సమాదిశత్ భగవానపి విశ్వాత్మా విదిత్వా కంసజం భయం యదూనాం నిజనాథానాం యోగమాయా సమాదిశత్
भगवान श्री भगवान ने अपि भी विश्वात्मा हर एक का परमात्मा विदित्वा यदुओं तथा उनके अन्य भक्तों की स्थिति जानकर कंसजम कंस के कारण भयम डर यदु नाम यदुओं के निजनाथानाम अपने परम आश्रय स्वरूप योगमायाम कृष्ण की आध्यात्मिक शक्ति योगमाया को समाधिशत आदेश किया किया दिया अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की कंस के आक्रमण से अपने निजी भक्त यदुओं की रक्षा के लिए विश्वात्मा भगवान ने योग माया को यह आदेश दिया। नित्यम भागवत सेवया कर रहे हैं उनको पता ही है क्या घटनाक्रम क्या प्रस्तुत हो रहा है घटना या इतिहास या लीला ये कहिए पुनः अनुवाद सुन लीजिए। कंस के आक्रमण से अपने निजी भक्त यदुओं की रक्षा के लिए विश्वात्मा भगवान ने योग माया को यह आदेश दिया और ये शुक उवाच है शुकदेव गोस्वामी ये कथन है राज्य परिषद को सुना रहे हैं जो बड़े ही उत्कंठित है। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को लीलाओं को विस्तार से सुनना चाहते हैं इसीलिए प्रथम अध्याय में इस स्कंध के प्रथम अध्याय में उन्होंने कई जिज्ञासाएं प्रस्तुत की सुखदेव गोस्वामी के समक्ष और उन जिज्ञासाओं का यह इस अध्याय से उत्तर दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लीला प्रारंभ होगी 90 अध्यायों में सबसे मोटा अध्याय तो दसम स्कंध है मोटा स्कंध दसम स्कंध है जिसमें कितने हैं 90 अध्याय है और फिर लीला और भी आगे बढ़ती है 11वें स्कंध में भी। तो इस प्रकार श्री कृष्ण के लीला अधिक वर्णित हुई है श्रीमद् भागवत में और फिर भागवत मतलब भगवान के संबंधित भागवत मतलब इसका भगवान के साथ संबंध हो इसको क्या कहते हैं इसको भागवत कहते हैं। तो भगवान के अन्य अवतार भी भागवत है उनकी कथा भी भागवत कथा तो पहले के संदों में कहे हैं सुखदेव गोस्वामी कई प्रकार के भागवत तो हुआ तात्पर्य श्रील सनातन गोस्वामी ने भगवान भी विश्वात्मा विदित्वा कंसजम भयम की टीका पर टीका इस प्रकार की है। भगवान स्वयं श्री कृष्ण है कि नहीं? कोई प्रश्न है? सनातन गोस्वामी टीका में लिखते हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वे विश्वात्मा है, क्योंकि उनका स्वांश परमात्मा के रूप में विस्तार करता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता 13:3 में होती है, क्षेत्रज्ञम् अपि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। भगवान कृष्ण सभी जीवों के, ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए बंद। भगवान कृष्ण सभी जीवों के क्षेत्रज्ञ अर्थात परमात्मा है। एक एक वाक्य को, क्या वाक्य नहीं, शब्द को, अक्षर को भी ध्यान पूर्वक सुनिए। भगवान कृष्ण सभी जीवों के क्षेत्रज्ञ अर्थात परमात्मा है। वे भगवान के समस्त अंशों के आदि उद्गम है। विष्णु के लाखों अंश है, यथा शंकरशान प्रद्युम्न अनिरुद्ध वासुदेव। कितने नाम सुने आपने क्या? किंतु इस भौतिक जगत में विश्वात्मा तो शिरोदक्षय विष्णु है। वैसे चारों नवमी के दिन प्रकट हुए वसुदेव, अप्रद्युम्न अनिरुद्ध और शंकरशान। राम, राम नवमी केवल राम नवमी ही नहीं है, राम नवमी वैसे भरत नवमी भी है, शत्रुघ्न नवमी भी है, और कौन बच गए, लक्ष्मण नवमी भी है। इन चारों भगवान है, यानी केवल राम भगवान है और फिर हनुमान भगवान। जो भगवान नहीं है उनको हम भगवान मानते हैं, जो भगवान है जो लक्ष्मण भगवान है, शत्रुघ्न भगवान और भरत भगवान, ये विष्णु तत्व है। जैसा कि भगवद गीता में 18:61 में कहा गया है, ईश्वरः सर्वभूतेषु ऋद्धेति अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, परमेश्वर समस्त जीवों के हृदय में स्थित है। अपने अंश विष्णु तत्व के रूप में कृष्ण वस्तुतः विश्वात्मा है, फिर भी अपने भक्तों के स्नेहवश, ये महत्वपूर्ण बात सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, लिख रहे हैं। पॉइंट, अपने अंश विष्णु तत्व के रूप में कृष्ण वस्तुतः विश्वात्मा है, विश्वात्मा है, फिर भी अपने भक्तों के स्नेहवश वे उन्हें निर्देश देने के लिए परमात्मा का कार्य करते हैं। सर्वस्य चाहम् हृदि सन्निविष्टो मत्तः प्रतिज्ञानम् अपोहनम् च। परमात्मा के कार्य क्षुरदक्षे विष्णु से संबंधित होते हैं, किंतु कृष्ण ने अपनी भक्तिन, कौन भक्तिन, देवकी पर कृपा की, क्योंकि वे जानते हैं, जानते थे कि कंस द्वारा सताई जाने के कारण देवकी डरी हुई है। शुद्ध भक्त भौतिक अस्तित्व से सदैव डरता रहता है। क्या सुने आप? शुद्ध भक्त भौतिक अस्तित्व से डरा रहता है। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, मेरे शिष्यों की या कुछ शिष्यों की समस्या ये है कि दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ माया, और माया से डरते नहीं। तो डरना चाहिए, सावधान होना चाहिए, थोड़ा दूर से माया का नमस्कार करना चाहिए। माया बड़ी बलवान है, के साथ चुनौती उसको चुनौती नहीं दे सकते, उसका हमला नहीं कर सकते। माया के साथ क्या करना होता है? माम एव प्रपद्यन्ते मायामेताम करन्ते। भगवान की शरण लो, फिर माया से बच जाओ। सीधे माया के साथ किसी घर पर जाना है तो रास्ते में पहले तो कुत्ता मिलता है, तो कुत्ते के साथ तो लड़ नहीं सकते। तो कुत्ते से बचना है या कुत्ते को वही छोड़ के अंदर अगर जाना है तो क्या करना होगा? अपने मित्र को बुलाओ। तो मित्र जब आएगा इनको आप विजिट करने मिलने गए हो, तो वो जब मालिक जब आएगा तो कुत्ता क्या करेगा? अपनी पूंछ को रास्ता साफ हो गया, यार वेलकम। तो कुत्ते के साथ टकरा नहीं था, तो माया के साथ कृष्ण की शरण। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, शुद्ध भक्त भौतिक अस्तित्व से सदैव डरता रहता, क्योंकि यह नहीं जानता कि आगे क्या होगा, क्योंकि उसे किसी भी क्षण अपना शरीर बदलना पड़ सकता है, तथा देहांतर प्राप्ति अस्पताल पास में ही है। कई सारे देहांतर वहां होते रहते हैं, स्पेशली कोई आईसीयू में जाता है तो वहां से शायद ही कोई लौटता है। वन वे ट्रैफिक होती है, दे जस्ट गो इन एंड डोंट कम आउट, लॉट ऑफ टाइम। तो ये जानकर शुद्ध भक्त इस तरह कार्य करता है कि कहीं से दूसरा शरीर धारण करके संसार के कष्ट न भोगने पड़े, जिससे उसका जीवन दूषित हो जाए। यही भय या अर्थात डर है। इस श्लोक में भी कम सजम भयम कहा है, तो श्री प्रभुपाद उस भय की इस प्रकार भी व्याख्या यहाँ पर कर रहे हैं। पुनर्जन्म ये भय की बात है। हरि बोल, हरे कृष्णा, क्या हुआ? सो गए। भयम माया से डरे नहीं है, आराम से सो रहे। माया का भय है तो क्या होगा? व्यक्ति खड़बड़ून जागा हो तो हमारा कहते हैं उत्तिष्ठ जाग्रत वरानी बोधत, उठो जागो, और जो वरदान प्राप्त हुआ उसको समझो, और जब तक लक्ष्य तक नहीं पहुंचते हो मत रुको, आगे बढ़ते रहो। स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, ऐसा अनुवाद। स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, तो कहां सोने के लिए कहां? अरे बाबू,
भयं द्वितीय अभिनिवेशतस्यात्।
भागवतम 11:37। यह भय संसार के कारण है। ठीक ठीक कहे तो हर एक को इस संसार से सतर्क और भयभीत रहना चाहिए। श्रीपाद पुनः स्मरण दिला रहे हैं, इस तरह संसार को न जानने से हर व्यक्ति प्रभावित होता है, किंतु भगवान कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव सतर्क रहते हैं। तो भक्त हो नहीं हो, सतर्क होगा नहीं होगा, लेकिन भगवान तो अपनी ड्यूटी निभाते हैं। भगवान सतर्क रहते हैं, नमे भक्त प्रणश्यति, भगवान की प्रतिज्ञा है। तो भक्त कभी बेसावध हो सकता है, भगवान में भगवान सदैव सतर्क रहते हैं। अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कृष्ण अपने भक्तों के प्रति इतने दयालु तथा वत्सल है कि वे उन्हें बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वे उन्हें एक क्षण भी भुलाए बिना भौतिक जगत में रहते रहे, वो भक्त रहता रहे। भगवान ने, या भगवान कहे गीता में, ददामि बुद्धि योगम तम एन माम उपयान्ति ते तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम। जो मेरी भक्ति कर रहा है, कब कब भक्ति करता है, तेषां सतत युक्तानां, सतत इसमें कोई बीच में कोई स्पेस वगैरह नहीं है। जब हम सतत कहते हैं, सतत ऐसा एक विशेष शब्द है, ये बीच में कोई स्थान नहीं है, कोई रिक्त स्थान नहीं है, स्पेस नहीं है, सतत आप कहिए, सतत 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 सतत, इसमें कोई इंटरप्शन है। जब हम सतत कहते हैं तो इसमें बीच में कोई स्थान नहीं है, मतलब अप्रतिहता अखंड सतत जो भक्ति करते हैं। और कैसी भक्ति करते हैं, या भगवान चाहते हैं भक्त कैसी भक्ति करे, एक तो तेषां सतत युक्तानां और प्रीति पूर्वकम। फिर ये दो प्रकार से जिसने भक्ति की है, कर रहे हैं, भगवान कहते ददामि बुद्धि योगम, उसको मैं बुद्धि दूंगा, और बुद्धि का वो मेरा भक्त कैसे उपयोग करेगा, एन माम उपयान्ति ते, जिससे एन मतलब जिससे, एन माम मेरी ओर, माम उपयान्ति ते वे, ते मतलब वे भक्त जिन्होंने ये तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम किया है, वे ते क्या करेंगे, उपयान्ति, यान्ति मतलब जाना, जाते हैं, याति मतलब जाना, एक जाता है, स याति ते यान्ति, एक जाता है अनेक जाते हैं, यान्ति। तो वे सारे भक्त जाते हैं, कहाँ जाते हैं, उपयान्ति, उप मतलब पास, पास में जाते हैं, किसके पास जाते हैं, मेरे पास जाते हैं या मेरे पास आते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम एन माम उपयान्ति, मेरे पास, भक्ति भी मेरी कर रहे हैं तो मेरे पास भी आते हैं, नहीं तो दूसरे लोग और कहीं जाते हैं। देवान देवे जो यान्ति, जो देवता के पुजारी है, देवान देव जो यान्ति, पितृन यान्ति, जो पितृ पूजा वगैरह करते हैं, यान्ति वे कहाँ जाते हैं, पितृलोक में जाते हैं। और भूतान यान्ति, जो भूत पिशाच तमगुण में जो भूत पिशाच की आराधना आया जो भी करते हैं वे भी जाते हैं भूतानि यान्ति भूतेज्या, वो भूतों को प्राप्त होते हैं जो भूतों के पुजारी है, देवताओं को प्राप्त होते जो देवताओं के पुजारी है, और पितृलोक में पहुंचेंगे जो पूर्वजों के माता के पुजारी से बन जाते हैं। लेकिन मध्यादिनों की मां यंती मध्यादिनों की मां, भगवान श्री कृष्ण अपने खुद के संबंध में कह रहे यंती मध्यादिनों मध्यादि मध्यादि मन मना भव मद भक्तो मध्यादि माम नमस्कुरु। वहां पर भगवान कहे हैं माम एव एष्यसि सत्यंते प्रतिजाने प्रियोसि मे। वो भक्त विचार कार्य करता है मन मना भव मद भक्तो मध्यादि माम नमस्कुरु, माम 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 चार बार कहा, ऐसा कि कोई संशय नहीं हो। स्मरण करना है मेरा स्मरण करो, भव मत भक्त मेरा भक्त बनो, मध्यादि पूजा अर्चना करनी मेरी पूजा अर्चना, नमस्कार करना मुझे नमस्कार कर भगवान, और ऐसा जो करेगा माम एव एष्यसि माम एव एष्यसि। दूसरा यार क्रियापद का उपयोग भगवान वो व्यक्ति मेरे पास आएगा माम एव एष्यसि सत्यम ते। ये बात क्या है सत्य है, प्रतिजाने प्रतिज्ञा पूर्वक मैं कहता हूं वो व्यक्ति मुझे प्राप्त होगा, और ये सब मैं क्यों कह रहा हूं या क्यों प्रतिज्ञा ले रहा हूं, प्रियोसी प्रियः असि त्वं प्रियः असि, तुम मुझे बहुत प्रिय हो। तो केवल अर्जुन ही प्रिय नहीं है, अर्जुन तो प्रिय है ही, लेकिन भगवान को वैसे उनका जीव प्रिय है, हम सभी भगवान के कौन है अंश है, अंश है अंश तो है ही, और कैसे है भगवान को हम प्रिय है, गॉड लव्स यू, गुड न्यूज। संसार में कोई लव समवन लव्स और नॉट लव, लेकिन गॉड लव्स यू, भगवान आपसे प्रेम करते, हर जीव के जीव से प्रेम है भगवान का, इतना ही पर्याप्त है। संसार में कोई प्रेम करे या ना करे, लेकिन कौन प्रेम करता है, भगवान प्रेम करते हैं, क्यों नहीं करेंगे भगवान प्रेम, हम भगवान के ही है। हम कोई पराये होते तो बात अलग हो सकती थी शायद, लेकिन हम भगवान के ही है तो भगवान क्यों नहीं प्रेम करेंगे, भगवान प्रेम करते हैं। यदुनाम निज नाथानाम, ये चर्चा का विषय तो है, यदुनाम निज नाथानाम, यदु जो जिन्होंने वैसे भगवान को अपना निज नाथ बनाया है, यदु भी भगवान के हैं और यदुओं ने भी भगवान को अपना नाथ बनाया है, जगन्नाथ ये जगत के नाथ है, यदुओं के भी नाथ है, आपके नाथ मेरे नाथ सबके सबके नाथ। रामचंद्र जगन्नाथ रामचंद्र रघुनाथ, रामचंद्र जगन्नाथ है, रामचंद्र रघुनाथ है, रामचंद्र रघुनाथ है, श्री कृष्ण यदुनाथ है, रघुनाथ यदुनाथ। वाह हुआ, भगवान ने भगवद गीता में 10-11 में कहा है तेषामेवानुकम पार्थम अहमज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। चतुश्लोकी भगवद गीता भी है। चतुश्लोकी भागवत है, भागवत के चार श्लोक महत्वपूर्ण है। तो भगवद गीता के दसवें अध्याय के चार श्लोक महत्वपूर्ण, तो चतुर्श्लोक ही कहते हैं उसमें से ये श्लोक एक श्लोक है। इसका अनुवाद, मैं उन पर कृपा के कारण उनके हृदयों में रहकर ज्ञान रूपी दीपक से अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को दूर करता हूं। तो भगवान रक्षा करते हैं, अपने भक्त की रक्षा करते हैं और भक्त या भक्तों की भय से रक्षा करते हैं। भय कैसे उत्पन्न होता है? अज्ञान से भय उत्पन्न होता है। अंधेरे में हम लोग अधिक भयभीत होते कि नहीं? हाँ, रात में अधिक भय होता है, घर के बाहर निकलना भी हम लोग खिड़की दरवाजे बंद करना चाहते हैं, हो सकता है कोई रात में खिड़की से या दरवाजे पे घुस सकता है। तो अंधेरे में, तो अज्ञान का जो अंधेरा है, अज्ञान से उत्पन्न अंधेरा भी हमारे डर का, भय का कारण। तो भगवान कहते हैं मैं क्या करता हूं, ईशाम एवानुकंपार्थ, अनुकंपा। भगवान का हृदय थोड़ा कंपित होता है, अनुकंपा, अनु मतलब दौड़ता है, अनु मतलब किसी के पीछे जाना, द्रवीभूत होता है, कुछ कंपन होता है। तो तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः, मैं क्या करता हूं, अहम अज्ञानजम तम, तम मतलब अंधेरा, किससे अंधेरा उत्पन्न हुआ, अज्ञानजम, अज्ञान से उत्पन्न अंधेरा, यह कहा है कंसजम भयम। इस श्लोक में कहा है भय, यदुओं को भय था, किसके कारण भय था, कंसजम भयम, ज मतलब जन्म लेना, तो यह जन्म देता था कंस, किसको जन्म देता था, भय को जन्म देता था, कंस से उत्पन्न भय, कंस जम भयम। तो यह भगवान गीता में कह गया अहम अज्ञान जम तम, अज्ञान ज, अज्ञान से जन्मा, अज्ञान से उत्पन्न जो तम अंधेरा है, तो मैं क्या करता हूं फिर उस अंधेरे को, ज्ञान दीपेन भाष्व रहा, उसके हृदय प्रांगण में मैं ज्ञान की ज्योति को जगाता हूं, जलाता हूं, नाशयामी आत्मभावस्तो। तो अज्ञान से उत्पन्न जो अंधेरा है नाशयामी, उसको मैं उसका विनाश करता हूं, अंधेरे का कैसे विनाश करता हूं, ज्ञान दीपेन, ज्ञान का दीपक जलाता हूं, मैं स्वयं दीपक जलाता हूं। और इस प्रकार भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। यो शब्द का अर्थ है कड़ी या लिंक, अंग्रेजी में लिंक कहते हैं, या कड़ी का या श्रृंखला। योग भी, कोई भी योग पद्धति भगवान से अपने टूटे संबंध को पुनः जोड़ने का प्रयास है। श्रील प्रभुपाद की ये सरल सी परिभाषा है योग की। कोई भी योग पद्धति भगवान से अपने टूटे संबंध को पुनः जोड़ने का प्रयास है। तो प्राणायाम और आसन किया तो संबंध जुड़ गया भगवान के साथ। आजकल जो योग पॉपुलर योग विश्व भर में इवन इन अमेरिका योग का प्रचार हो रहा है. और योग में क्या होते हैं, दो अंग उनके होते हैं, दो अंग. एक होता है आसन और आसन के बाद प्राणायाम, पहला आसन दूसरा प्राणायाम फिनिश. इससे ही भगवान के साथ संबंध स्थापित होगा नहीं होगा, क्योंकि ये अधूरा योग हुआ. हैफ नॉलेज डेंजरस कहते हैं, इनकम्प्लीट या हैफ नॉलेज क्या होता है, बड़ा भयानक होता है. आजकल का जो योग है भयानक भी कह सकते हैं. तो अष्टांग योग, योग के अंग कितने हैं, अष्ट अंग है. यम नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर ध्यान, फिर धारणा और फिर समाधि, आठवां है समाधि. फिर वह भगवान के साथ संबंध स्थापित हुआ. तो शुरुआत है यम नियम से और फिर योग ध्यान धारणा समाधि. तो वह योग के अनेक भेद है जिनमें से भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है. अन्य योग पद्धतियों में सिद्धि के पूर्व विविध प्रकार की विधियां अपनानी पड़ती है. नियम नियम भी विधि है. प्राणायाम आसन के पहले, किंतु भक्ति योग का प्रत्यक्ष होता है. ऐसी शर्तें भक्ति योग को लागू नहीं होती. भक्ति अपने में पूर्ण है, संपूर्ण है. भगवद गीता 6:47 में भगवान कहते हैं, योगी नाम अभी सर्वेशां मदगते नांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः. मत ओपिनियन अपनी मते कौन आला कृष्ण आला मत. ओके, तो कृष्ण अपना मत कह रहे हैं, इट्स माय ओपिनियन. फिर फिनिश और क्या. अगर भगवद गीता आप समझना चाहते हो या भगवद गीता पर कुछ भाष्य या भाषण देना चाहते हो तो वही कहना होगा जो भगवान ने कहा है. तो भगवान कह, मेरा मत तो ये है, योगी ना सारे योगियों में श्रेष्ठ योगी कौन है, क्या नाम उस योगी का, भक्ति योगी सर्वश्रेष्ठ है. इन पुणे के एक भाष्यकार ने कहा, गीता का रहस्य है, आपको पता नहीं, गीता का रहस्य कर्मयोग. ऐसे एक लोकमान्य होके गए जिन्होंने कहा गीता का रहस्य कर्मयोग. तो भगवान तो खैर गीता का रहस्य, गीता का सार तो भक्ति योग है. और ये मेरा मत है, समय युक्त तमो मतः, माय ओपिनियन फिनिश. और फिर औरों को क्या करना चाहिए, मुख बंद करना चाहिए, यू शट अप. प्रभुपाद जी कहा करते, मुख बंद करो, अपने ख्याल अपने विचार अपने घर में रख सकते हो, मुझे लगता है. अरे भगवान ने कहा तो और क्या, जब तुकाम हणे हो गया, तुकाम हणे, तुकाराम महाराज एक बार कहे तो फिर आगे किसी को कुछ बोलना नहीं होता, मुख बंद करो. और यह कोई भाष्य की आवश्यकता ही नहीं है, जब भगवान ने कहा या कई बात थोड़ी असंदिग्ध संदिग्ध या कोई स्पष्ट नहीं हो तो वह भाष्य का कुछ उपयोग भी हो सकता है. लेकिन प्रभुपाद कभी कहा करते थे, दिस इज अ वॉच, ये घड़ी है, तो और कोई भाष्य की आवश्यकता है क्या? कुछ इंटरप्रिटेशन वगैरह की जरूरत है? ये घड़ी है, हो गया। तो भगवान ने कहा सारे योगियों में भक्ति योगी श्रेष्ठ है, और क्या? और कुछ भाष्य की जरूरत है? मैं दिमाग लड़ा लेगी कोई। तो भगवत गीता एज इट इज, इसी का नाम है। भगवान जैसे कहे ऐसे ही, फिर वही तो भगवत गीता होगी। अदरवाइज फलाना इसकी गीता, उसकी गीता, उसकी गीता, उसकी गीता, वो भगवत गीता तो नहीं रहे। सॉन्ग ऑफ गॉड नहीं हुआ, सॉन्ग ऑफ डॉक्टर राधा कृष्णन, या सॉन्ग ऑफ इस महात्मा, सॉन्ग ऑफ लोकमान्य, सॉन्ग सॉन्ग या गीत। लेकिन भगवत गीत, जहां तक भगवत गीता की बात है, तो भगवान का गीत, भगवान के वचन जो के जो एज इट इज, जसी आए तसी, तेना मूल रूप है भगवत गीता, तेना मूल रूप है। तो भक्ति योग के लिए अगले जन्म में, भक्ति योगी के लिए अगले जन्म में मनुष्य शरीर मिलना निश्चित है, जैसा कि कृष्ण ने कहा है, सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। योग माया भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है। भगवान अपने भक्तों पर स्नेह के कारण निरंतर उनके संपर्क में रहते हैं। भगवान का कम्युनिकेशन, संपर्क भक्त के साथ सदैव बना रहता है। तो भगवान तो कोई ज्यादा दूर तो नहीं है, सबसे अगर निकटतम कोई व्यक्ति है तो वे कौन है? भगवान। बाकी लोग तो बगल में हो सकते हैं, पड़ोस में हो सकते हैं, या गोद में भी हो सकते हैं, लेकिन कोई अंदर है, कोई अंदर अगर कोई है तो भगवान का ही क्लेम है, सर्वस्य चाहम प्रतिसन्निविष्टः, सबके हृदय प्रांगण में मैं रहता हूं। और संपर्क कैसे चलता रहता है? मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, ये संपर्क है, कम्युनिकेशन भगवान का। मत्तः फ्रॉम मी, मुझसे क्या होता है? स्मृति ज्ञान और भुलावा, भूल जाना, स्मृति विस्मृति के कारण, भगवान के कारण ही होती है। अन्यथा उनकी माया शक्ति इतनी प्रबल है कि वह ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवताओं को भी मोहित कर लेती है। अतः भगवान की शक्ति योग माया कहलाती है। क्योंकि भगवान विश्वात्मा है, अतः उन्होंने योग माया को आदेश दिया कि वह देवकी की रक्षा करे। तात्पर्य समाप्त। भगवान अपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयं यदुनां निजनाथानां योगमाया समादिशत्। भगवान अपि विश्वात्मा, अभी अभी तो मतलब ऐसे होते हुए भी, कैसे होते हुए भी, भगवान विश्वात्मा होते हुए भी, विश्वात्मा तो बहुत बड़े हो गए, महान हो गए, इनके कई सारे कार्यकलाप, इनकी व्यस्तता संसार भर में, ऐसा होते हुए भी भगवान का ध्यान कहाँ पर है? He is busy, he is very big, महान है और व्यस्त है, कई सारे कार्यकलाप है, विश्व के भी आत्मा है, ऐसा होते हुए भगवान क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पर, यदुनाम निज नाथाना, उनका ध्यान अपने भक्तों की ओर है। कौन से भक्त या इस संदर्भ में इस या यहाँ पर क्या यदुओं का उल्लेख हो रहा है और वे भक्त है कैसे समझ में आता, निज नाथाना, यदुओं ने भगवान को अपना निज नाथ बनाया, वे सनाथ है अनाथ नहीं है। संसार के अधिकतर लोग कैसे होते हैं, अनाथ अनाथालय, और केवल वे लोग ही जो अनाथालय आश्रम में रहते हैं, जो 10-20 कई होंगे अनाथालय मुंबई में इधर उधर, तो केवल वे लोग ही अनाथ नहीं है, वैसे जो अनाथालय में नहीं है या बाकी सभी है, जिन्होंने भगवान को अपना नाथ नहीं बनाया है, वे सारे कौन है, अनाथ है। तो यह जगन्नाथ है, जगन्नाथ स्वामी की, तो जिन्होंने जगन्नाथ को अपनाया है, जगन्नाथ को अपना निज नाथ बनाया है, वही सनाथ है। सनाथ मतलब नाथ के साथ, अनाथ मतलब नाथ के बिना जो है, अनाथ सनाथ। तो ये सनाथ है, ये यदुवंशी ये सनाथ है, निज नाथ आना, उन्होंने भगवान को अपना निज नाथ बनाया है। तो भगवान पे विश्वात्मा, भगवान विश्वात्मा होते हुए भी उनका अपनी अपने भक्तों की ओर, या जिन्होंने जिन भक्तों ने भगवान को अपना नाथ बनाया, निज नाथ, उनकी ओर उनका ध्यान है। किस प्रकार से अपना ध्यान भगवान व्यक्त कर रहे हैं, तो वह कंसजम भयम, कंस का भय है। किसको कंस का भय है, जिन्होंने भगवान को अपना निज नाथ बनाया है, वह उन्हीं को भय है, कंस का भय है। और विदित्वा जानकर, भगवान इस बात को जान गए हैं, या भगवान है इसीलिए विदित्वा, इसीलिए वे जान गए हैं। वे भगवान नहीं होते तो इस बात को, भगवान तो अपने धाम में, भगवान तो अपने धाम में, और यह कोई घटनाक्रम घट रहा है इस पृथ्वी पर मथुरा वृंदावन में, तो वे भगवान है। और भगवान मतलब कौन है, अभिज्ञ स्वराट, अभिज्ञ, ज्ञ मतलब जानना, और भगवान को कहा है अभिज्ञ, अभी मतलब सभी, सभी बातों को जानने वाले कौन होते हैं, भगवान। तो भगवान अभिज्ञ है, या भगवान सर्वज्ञ है, इसीलिए विदित्वा। और एक दृष्टि से भगवान, या भगवान सर्वज्ञ क्यों है, क्योंकि भगवान सर्वत्र है, अपने धाम में भी है, फिर अंडांतरस्थ परमानुजयांतरस्थम, अंडांत, अंडांतरस्थ मतलब कौन हो गए, अंडांतरस्थ कौन है, गर्भदक से विष्णु कैसे है, अंडांतरस्थम, एक एक ब्रह्मांड में एक विष्णु, गर्भदक से विष्णु अंडांतरस्थम है। फिर परमाणु चयांतरस्थम, परमाणु क्या होता है, परमाणु परम अणु, एटम अणु परमाणु, उसमें भी है भगवान। तो गर्भोदक्ष विष्णु है, फिर क्षीरोदक्षय विष्णु है, तो क्षीरोदक्षय विष्णु के रूप में भगवान सर्वत्र है, तो जो सर्वत्र है फिर उनको सर्वज्ञ होना आसान है। हम लोग सर्वत्र नहीं, अब हम लोग अब कहाँ है, बस यही है, घर में नहीं है, तो घर में क्या हो रहा है कोई नहीं जानता, क्योंकि हम केवल यही पर है, तो इस क्षेत्र का ज्ञान हमको है लेकिन दूर का नहीं। भगवान सर्वत्र है इसीलिए वे सर्वज्ञ भी है, तो विदित्वा भगवान ने जान लिया। कंसजम भयम, उनके भक्त कंस के कारण भयभीत है, तो फिर भगवान अब तो केवल जानकर भी ओके, ऐसे ऐसे भक्त फलाने भक्त कोई संकट में है, ये ज्ञान तो हुआ, लेकिन भगवान कहते थे ईशाम एवानुकंपार्थम, उनमें अनुकंपा उत्पन्न होती है, अनुकंपित होते हैं जब उनके भक्त सब किसी कष्ट में परेशानी में ही है, तो यह उनके भक्त निजनाथ जिन्होंने बनाया है कृष्ण को, तो वे कंसजम भयम, कंस के भय से पीड़ित है, विदित भगवान होने के कारण को पता चला है, तो केवल पता ही नहीं है भगवान को, ये पता लगवा के बिरो फिर जो भी, हाँ पता तो चला, हाँ तुम नहीं जानते, हाँ तो जानता तो, लेकिन फिर कुछ किया नहीं तुमने, कई बार तुम जानते तो है लेकिन मानते नहीं या कुछ करते नहीं, फिर कुछ कार्रवाई कुछ सहायता कुछ समथिंग समय, लेकिन भगवान पुनः भगवान होने के कारण भगवान अभी विश्वात्मा, भगवान जान भी गए हैं कम सजम भयम, और साथ साथ फिर कुछ एक्शन, तो भगवान करुणा सिंधु है, कैसे भगवान, भगवान कैसे है, हे कृष्ण करुणा सिंधु, लेकिन वे अगर केवल करुणा सिंधु होते और दीन बंधु नहीं होते तो क्या होता, सोचिए, वे करुणा सिंधु होते अपने स्थान पर, वो करुणा सिंधु तो है, करुणा का सिंधु है वे, लेकिन दीन बंधु नहीं होते तो क्या लाभ होता उस करुणा का औरों को या जीवों को। करुणा सिंधु तो धनी तो है लेकिन दानी नहीं है, धनी है लेकिन दानी नहीं, तो क्या कंस्ट्रक्शन में क्या मदद हो सकती है, धन तो खूब है, द 20th richest पर्सन इन द वर्ल्ड बंबई में, सुनने में आया बंबई में रहता है, लेकिन वो दानी नहीं है तो क्या धन का उपयोग, जनता को या गरीबों को या टेंपल कंस्ट्रक्शन करने वालों को, तो भगवान केवल करुणा सिंधु होते और दीन बंधु नहीं होते तो उस करुणा का लाभ, उस करुणा से लाभान्वित नहीं होते भक्त, तो पुनः केवल सर्वज्ञ ही नहीं है, केवल जानते ही नहीं, जाने ही नहीं कि कंस से के भय से पीड़ित है यदु वंशज, लेकिन साथ ही साथ वे भगवान मतलब करुणा सिंधु और दीन बंधु भी है, इसलिए उनका दिल हृदय द्रवीभूत और फिर अनुकंपा और कुछ कार्रवाई करना चाहते भगवान, और वो कार्रवाई है योग माया समाधि सब कुछ करना होगा। तो योग माया को आदेश दिए, योग माया यस सर, योग माया आ गई। और फिर अगर आप कल भागवत की कक्षा में रहोगे तो फिर आप सुनोगे गच्छ देवी व्रजम भद्रे गोप गोपी भीर अलंकृतम, भगवान का जाओ 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 हरि आप। तो भगवान सारा ब्रीफिंग करेंगे और वहां जाना तो जाके क्या करूं मैं, क्यों जाना चाहिए। तो योग माया और ये सारा वार्तालाप या संवाद, भगवान तो अब अपने धाम में ही है, गोलोक में है, और वहीं पर योग माया को वहां पर गोलोक में आदेश दे रहे हैं। और फिर आदेश होगा कि जाओ गच्छ, गच्छ मतलब जाओ, आ गच्छ मतलब आओ, आ गच्छ आओ, गच्छ जाओ। तो कहाँ जाना है, क्यों जाना है, क्या मिशन है, भगवान कहेंगे। तो कंस के भय से पीड़ित उनके जो भक्त है, भगवान कुछ कार्रवाई प्रारंभ कर रहे हैं। देवकी के गर्भ में बलराम अब स्थित है, तो भगवान कहेंगे उस गर्भ को पहुंचा दो रोहिणी के गर्भ में। ऐसे मैं भी आना चाहता हूं, लेकिन वो जब तक वो गर्भ खाली नहीं होगा मैं कैसे आ सकता, आई एम सेकंड नेक्स्ट वन इन द लाइन। तो किसी ने वो गर्भ ऑक्यूपाई किया हुआ है, बिजी गर्भ बिजी है, तो खाली करो खाली करो। तो खाली होते ही फिर तो मेरे लिए रास्ता बनाओ, स्थान बनाओ, बलराम को वहां से रोहिणी के गर्भ में पहुंचाओ, ताकि मैं फिर देवकी गर्भ में प्रवेश कर सकता हूं। और फिर आगे और भी आदेश, समाधिशत, समाधिशत केवल आदिशत नहीं कहा, समाधिशत मतलब अच्छी तरह, कई सारे उपदेश, कंप्लीट पैकेज ऑफ इंस्ट्रक्शंस, फिर ये करना है, फिर बाद में करना, बाद में वो करना, बाद में वो करना सब। फिर तुम भी जन्म लेना, यशोदा के गर्भ से कैसा हुआ। तो आज इतना ही ठीक है, कल आगे आप सुनोगे नित्यम भागवत से हो या नहीं। कोई प्रश्न या चर्चा बताइए।
थैंक यू वेरी मच, आपने आज के व्याख्यान में बहुत सुंदर सुंदर दृष्टांत दिए। एक छोटा सा मैंने दृष्टांत आपका सुनने वाला एक बार उसके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ। आपने कहा था कि
ऐसा पकड़िए,
भगवान तो अपने कमर पे दो हाथ रख करके हमारा इंतजार कर रहे हो, कह रहे हैं कि सामने नदी में पानी बहुत कम है और आप मेरे पास आ जाओ, तो इसी बात को मैं जानना चाहूंगा थोड़ा सा और डिटेल में।
करकटावरी ठेवनिया, तो भगवान कमर पर हाथ रख के खड़े हैं। पहले तो ऐसे कुंडलिक की प्रतीक्षा में थे, कुंडलिक थोड़े व्यस्त चल रहे थे, आई एम वेरी बिजी गॉड, ऐसा व्यस्त आंकड़ा तो पिए तो भगवान रुके थे, फिर मिले भी दलित से, लेकिन अब जो भगवान रुके हैं तो आचार्यों का, और कमर पर हाथ अब भी भगवान के हैं तो आचार्यों का ये भाव है कि भगवान दर्शनार्थियों को ये कहना चाहते हैं कि तुम यहाँ आए हो, अच्छा हुआ, तुम्हारा स्वागत है, तो मेरे दर्शन के लिए आए हो तो हुआ। वैसे तुम नदी में नहीं सागर में थे, ये भव सागर में, और भव सागर में जन्म लेके मर रहे थे, मर के जन्म के बाद ये सब चल रहा था, लेकिन अब तुम मेरे पास या मेरे चरणों तक पहुंचे हो, मतलब यह अब मतलब तुम किनारे आ गए, तुम समुद्र के लगभग किनारे पहुंच गए हो, यहाँ तो ज्यादा जल नहीं है, भय भय की जरूरत नहीं है, कौन सा जम भयम, सागर भी भय उत्पन्न करता है क्योंकि बहुत गहरा होता है तो भयभीत होता है व्यक्ति, लेकिन जब किनारे आता है तो कोई भय की जरूरत नहीं है। भगवान कहते यहाँ ज्यादा पानी नहीं है, डरो नहीं, मां सोच कितना पानी है, बस इतना ही पानी है, तो उतने पानी में कोई डूब मर नहीं सकता, मरने का प्रश्न नहीं है, तुम बच गए, तो ये भाव है। ओके आषाढ़ी एकादशी चतुर्मास का प्रारंभ होता है उस समय, उस एकादशी को देव शयनी एकादशी भी कहते हैं, और फिर भगवान चार महीने विश्राम करते हैं, और फिर और एक एकादशी आती कार्तिक में, उसका नाम फिर उत्थान एकादशी, भगवान को जगने का समय। तो आषाढ़ी एकादशी, देव शयनी एकादशी वो समय है भगवान के विश्राम की तैयारी भगवान कर रहे हैं, तो विठल भगवान के भक्त उनके विश्राम के पहले उनका दर्शन करना चाहते हैं, अभी चार महीने दर्शन नहीं होगा, ये होता तो है लेकिन भाव ये है कि भगवान अब विश्राम करेंगे तो चलो उनके विश्राम के पहले हम दर्शन कर लेते हैं। क्योंकि चतुर्माश उस समय से प्रारंभ होता है, वैसे कई लोग वैसे पंढरपुर में ही रहते हैं, वहां जाते हैं, और कई लोग वही रहते हैं, चार महीने वहां रहते हैं, तो जगन्नाथपुरी में भी रहा करते थे भक्त, आते थे रथ यात्रा के समय जो आषाढ़ी एकादशी के कुछ दिन पहले होता है, होती है रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में, तो चैतन्य महाप्रभु के समय वो भक्त आते थे रथ यात्रा में, तो चार मास वही रहा करते थे।
लेकिन बाद में भगवान प्रकट होने के बाद भी वसुदेव जी 11 साल से जेल में रहे, ना कृष्ण उनको मिला तो
अच्छा नहीं हुआ। पांडव भी तो भगवान के भक्त थे, उनको कुछ कम कष्ट मिला। प्रभुपाद भी भगवान के भक्त थे तो कई प्रकार के कष्ट या असुविधा या प्रतिकूल बातों का सामना उनको भी करना पड़ा। विदेश जाना था तो प्रभुपाद श्री प्रभुपाद के पास धन राशि नहीं थी हवाई जहाज से जाने के लिए, फिर वो माल ढोने वाला कार्गो शिप में ही बैठ के प्रभुपाद गए और रास्ते में कई सारे दिल के दौरे और सी सिकनेस को पढ़िए। और फिर प्रभुपाद जब वहां पहुंचे तो प्रभुपाद अपने डायरी में नोट किए कि मैं जब उस जलदूत बोर्ड से उतरा तो मुझे ये पता नहीं था कि मुझे दाहिने मुड़ना चाहिए बाएं मुड़ना चाहिए, कहाँ जा रहा, कोई रिसेप्शन के लिए कोई नहीं आया, कोई गार्लैंड लेके कोई नहीं आया था, ना तो कोई होटल बुकिंग वगैरह थी, नथिंग। तो ये सारा हुआ तो ही वैसे फिर श्रील प्रभुपाद कहिए कि वो फिर आगे वैसे हमारे जयद्वैत महाराज कहा करते थे, प्रभुपाद हवाई जहाज से अगर जाते 5-star होटल में उनका बुकिंग पहले ही होता और ग्रैंड रिसेप्शन वहां होता तो शायद प्रभुपाद के जीवन चरित्र का एक भिन्न दर्शन होता हमको। ऐसा तो सभी करते ही है, नो बिग डील जिसको कहते हैं, लेकिन प्रभुपाद को भगवान ने जिस परिस्थिति से गुजारा और फिर एक थोड़ा कॉन्ट्रास्ट ये इस प्रकार की परिस्थिति, फिर जो आगे का जो सारा यश और वैभव प्रभुपाद कहा, तो मैंने 40 रुपए से शुरुआत की, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस में कितना इन्वेस्ट किया, 40 रुपए इन्वेस्ट किए, अभी 4,000 crore हो गए। तो यहाँ कोई फॉलोअर्स नहीं थे, कोई फुल टाइम डिवोटी नहीं बन रहा था, फिर वहां बहुत कुछ हुआ। तो या कठिनाई भी तो है, तो भक्त उसको कैसे संभालता है, उस परिस्थिति में कैसे रहता है, कैसे अपने कृष्ण कॉन्शियसनेस कृष्ण भावना को कैसे मेंटेन करता है, इसका प्रदर्शन भी तो भगवान कराना चाहते हैं। तो वह देवकी है या पांडव है या श्री प्रभुपाद है या ये सब पता रहता है, द्वंद्वातीतो विमत्सरः सुखे समय सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, किसी का नाम वैसे कृष्ण कॉन्शियसनेस या टू बी ट्रांसेंडेंटल जिसको कहते हैं, टू ट्रांसेंड अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति या निर्धन प्रभुपाद है, नो फ्रेंड्स नो मनी, बाद में फ्रेंड्स आ गए बाद में मनी आ गई, तो पहले प्रभुपाद पहले भी कृष्ण कॉन्शियस बाद में भी कृष्ण कॉन्शियस। सुदामा जब सुदामापुरी के सुदामा जब निर्धन थे तो उनका 16 राउंड वगैरह चल रहे थे, फिर जब पैलेस हो गया भगवान ने अपने जैसा ही द्वारिका का जो वैभव उस सुदामापुरी में पहुंचाया, वहां रहने लगे तो क्या 16 राउंड बंद हो गए, नो मंगल आरती, तो भक्ति तो बनी रही पहले भी और बाद में भी, तो डिपेंड नहीं करती है सुख दुख यश अपयश कृष्ण कॉन्शियस रहते हर परिस्थिति में. ओके हाँ ओके तो रुकेंगे यहाँ. ओके निधाय गौर प्रेमानंदी.